नमस्कार भारत, तारीख 23 दिसंबर दिन सोमवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने नागरिकता कानून में जो बदलाव किए हैं वो सही हैं।
क्या झूठ फैलाकर कहा, ये जो एक्ट लाया गया है ये उन लोगों पर लागू होगा जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं।
झारखंड में किसकी जीत किसकी हार, कौन बनाएगा सरकार, फैसला आज। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा सीरिया सरकार की ओर से हुए हमलों के चलते 80,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर।
Bombardımandan kaçan 80 binin üzerinde İdlib'li kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göç etmeye başladı.
सुनिएगा पाकिस्तान से वुसतुल्लाह खां की डायरी और साप्ताहिक खेल कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी, पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। नागरिकता संशोधन कानून पर देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून का बचाव किया। राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में एक रैली को संबोधित कर नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी दल इस कानून के संबंध में लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मोदी की इस रैली को दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के चुनावी अभियान के आगाज के तौर पर भी देखा जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रचेप तैयब अर्दोगान ने कहा है कि सीरिया सरकार की तरफ से इदलिब प्रांत में हुए हमलों के कारण 80,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अर्दोगान ने कहा है कि ये लोग अपने घरों को छोड़कर तुर्की की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं। उन्होंने साफ किया कि इतनी बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों को वो अपने देश में शरण नहीं दे सकते। वहीं दूसरी तरफ रूस के समर्थन वाली सीरियाई सेना ने इदलिब में विद्रोहियों पर अपनी बढ़त बना ली है। अमरीकी सीनेट के डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने रिपब्लिकन पार्टी से अपील की है कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग के लिए प्रमुख गवाहों को पेश करने की मंजूरी दे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चक शूमर ने एक ईमेल का जिक्र किया जिसे उन्होंने बहुत ही विस्फोटक ईमेल बताया। चक शूमर ने बताया कि यह ईमेल ट्रंप प्रशासन ने भेजा है जिसमें यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता कम करने के निर्देश हैं। चक शूमर ने कहा कि डेमोक्रेट नेताओं की मांग बहुत ही वाजिब है।
A top administration official, one that we requested, is saying, "Stop the aid."
इस ईमेल में बहुत विस्फोटक जानकारी है। एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से जारी यह जानकारी मिली है, जिसमें लिखा गया है कि सैन्य सहायता रोक दी जाए। यह ईमेल ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बातचीत के ठीक 91 मिनट के बाद भेजा गया, और साथ ही लिखा है कि इस सूचना को गुप्त रखा जाए। अब गवाह को बुलाने के लिए इससे ज्यादा और क्या जानकारी चाहिए? ये थे डेमोक्रेट नेता चक शूमर के शब्द। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक समावेशी सरकार बनाने का वादा किया है। अफगानिस्तान में हुए चुनावों के शुरुआती नतीजों में अशरफ गनी की जीत बताई गई है। टीवी के जरिए दिए गए अपने संबोधन में अशरफ गनी ने कहा कि सभी दलों को इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से जारी शुरुआती नतीजों में कहा गया कि अशरफ गनी आधे से कुछ ज्यादा वोट पाने में कामयाब रहे हैं। उन्हें मुख्य प्रतिद्वंदी डॉक्टर अब्दुल्ला ने इन नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है। वहीं अशरफ गनी ने चुनाव आयोग के नियमों का पालन करने की बात कही है। इस वक्त हम सभी को नियम कानून स्वीकार करने चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। आने वाले दिनों में जब चुनाव आयोग अपना अंतिम फैसला सुनाएगा तो हमें उसे भी स्वीकार करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग उसका स्वागत करेंगे। ये थे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सूडान के राज्य अभियोजक ने डरफुर इलाके में हुए अपराधों की जाँच शुरू कर दी है। इस इलाके में ये अपराध तब हुए थे जब ओमर अल बशीर सूडान के राष्ट्रपति थे। बाद में उन्हें अपने पद से हटना पड़ा था। 10 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने बशीर पर नरसंहार और युद्ध अपराध के आरोप लगाए थे और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। साल 2003 में सूडान में विद्रोहियों और सरकारी फौज के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार उस दौरान 30,000 लोगों की मौत हुई थी और 20 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए थे। मध्य अफ्रीका के अटलांटिक तट पर बसे देश गेबन से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी अफ्रीकी तट से कुछ हथियारबंद लुटेरों ने गेबन के मुख्य बंदरगाह लिबरविल में घुसपैठ की है। इन लुटेरों ने यहां पर कम से कम 4 जहाजों पर हमला किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत, अभिनंदन। रेडियो के साथ साथ आप इस कार्यक्रम को bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। भारत में नागरिकता कानून में हुए हालिया संशोधन के खिलाफ पूरे देश में चल रहे प्रदर्शनों के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली की। इस रैली को दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजाने के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण में सारा जोर इस बात पर दिया कि उनकी सरकार ने नागरिकता कानून में जो बदलाव किए हैं वो सही हैं। उन्होंने कहा,
क्या झूठ फैलाकर कहा, ये जो एक्ट लाया गया है ये उन लोगों पर लागू होगा जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं। जो लोग इस तरह का झूठ बोल रहे हैं उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक कारणों से परेशानी जो हुई, उन्हीं लोगों को सुरक्षा देने के लिए ये कानून है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की नीयत पर सवाल उठाकर विपक्ष चाले चल रहा है, लोग इसके बहकावे में ना आए। एक बेहद लंबे और आक्रामक भाषण के बीच मोदी ने कहा कि देश का पढ़ा लिखा नौजवान अब उनकी बातें सुनेगा तो वो CAA को लेकर फैलाई गई अफवाहों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। पर सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का ये दावा कितना सही है, ये समझने के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत चाहल ने बात की वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह से।
जो भी गलतफहमी है उसको दूर करने की भरपूर कोशिश प्रधानमंत्री ने भी की है। उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने एक बात ये कही कि ये कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का है, एक बात। और NRC के संबंध में उन्होंने उदाहरण दिया कि कौवा कान लेके गया, कौवे के पीछे दौड़ गए। उसके जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि NRC का अभी कोई प्रारूप नहीं बना है, सरकार में इस पर अभी कोई चर्चा नहीं, ये कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि गृहमंत्री ने संसद में दोनों सदनों में कहा कि NRC आएगा, लेकिन वहां भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि कब से आएगा, उसका प्रारूप क्या होगा। NRC को लेकर जो इतनी सारी गलतफहमियां या इतनी उग्र प्रतिक्रियाएं हैं उसके केंद्र में असम की NRC है। तो NRC का जब तक कोई प्रारूप सामने नहीं आता विरोध या समर्थन करने का कोई आधार नहीं।
पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो उनके बैनर पोस्टर पे NRC लिखा हुआ दिखाई देता है, तो क्या आपको लगता है कि ये इससे उन्हें जवाब कुछ मिले होंगे, कुछ संतोष उनके बीच भी बैठेगा?
इस पर निर्भर करता है क्या वो समझना चाहते हैं। अगर उनकी आशंका, उनके सवाल जेन्युइन है, सचमुच उनके मन में कोई आशंका है, तो आज के बाद नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनको अगर विरोध ही करना है, उनको तथ्यों से कोई मतलब नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आएगी। कुल मिलाकर अगर मुसलमानों को लेकर जो आशंकाएं हैं उन पर प्रधानमंत्री का आज का जो भाषण है उसका निचोड़ कहें, एक लाइन में अगर कहना हो, तो प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया है कि भारतीय मुसलमान हमारे हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमान हमारे नहीं है। जो उन्होंने कहा कि आप शरणार्थी और घुसपैठिया में फर्क कीजिए,
यानी कि दूसरे कानून के तहत अगर वो चाहें आवेदन करना, भले ही वो वैसी माइनॉरिटी ना हो जिनको प्रताड़ित किया गया हो, प्रोसिक्यूट किया गया हो, तो उन्हें मिल तो सकता ही है ना एनीवे।
हाँ, मिल ही रहा है। अदनान सामी को इसी तरह से मिला है, बहुत से लोग हैं। पिछले 5 साल में 500-600 लोगों को, ऐसे लोगों को मिला है जो मुस्लिम है, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित नहीं है। लेकिन ये केस टू केस बेसिस होगा, ये होलसेल नहीं होगा जैसा कि इन 6 धर्मों के लोगों के लिए हो रहा है। ये वन टाइम प्रोविजन है। ये इस कानून के जरिए भारत सरकार ये नहीं कह रही है इन देशों के लोगों से कि आइए हमारी नागरिकता लीजिए। हमारे यहाँ एक समस्या है कि इन तीनों देशों से इन 6 धर्मों के जो अनुयायी हैं वो आ चुके हैं, अब उनका क्या करें? या तो उनको खदेड़ के जो है सीमा पार धकेल दें, या फिर उनको नागरिकता देने का काम करें। तो सरकार ने वो फैसला किया है, जिसकी मांग पहले जब विपक्ष में थी कांग्रेस पार्टी, उसके कई नेता कर चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह से अशोक गहलोत तक, ममता बनर्जी तक। आज उनकी राजनीति को ये सूट नहीं करता है, इसलिए वो दूसरी तरह की बात कह रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह। रामलीला मैदान में शनिवार को यानी कि कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। उन्होंने इसे अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर वाली अफवाहें सरासर झूठ हैं
और ये बद इरादे वाली हैं, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दावे के विपरीत बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की साल 2018 की एक रिपोर्ट में डिटेंशन सेंटर से बाहर आए लोगों की दास्तां बयां करती है। यदि आप बीबीसी की इस विशेष रिपोर्ट को, जो कि उस समय हमने प्रसारित की थी, अगर आप पढ़ना चाहें तो bbchindi.com पर आएं, जहां पर आपको इन डिटेंशन सेंटरों की सच्चाई मालूम चलेगी। झारखंड विधानसभा चुनावों में फैसले की घड़ी आ गई है। 5 चरणों में 81 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद मतों की गिनती अब शुरू होने वाली है। वोटों की गिनती के साथ ही 1215 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। राज्य में किसकी सरकार बनेगी, अब से चंद घंटे बाद नतीजे सामने आएंगे। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी रांची के एक मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद हैं। सुबेरे सत्ता में रहने या फिर बेदखल होने की बेचैनी सबसे अधिक किस खेमे में है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में? सलमान रवि, किसके पास सबसे ज्यादा बेचैनी है?
ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 22 दिसंबर की रात सबसे लंबी रात थी, क्योंकि दिन छोटा होता है और जो ये 23 की सुबह होती है, इस तक पहुंचने के लिए रात बड़ी लंबी थी। तो सभी राजनीतिक दलों के लिए ये रात काफी लंबी रही है। और मतगणना केंद्र है ये पंडरा का, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, और 7 बजे से मतदान कर्मियों का अंदर मतगणना कर्मियों का अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि 1200 उम्मीदवार रहे, लेकिन कमाल की बात ये रही कि कोई भी राजनीतिक दल यहाँ में अभी तक झारखंड में अपने बूथ पे पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सका। 81 सीटों वाली विधानसभा है, बहुत कम सीटें हैं इसकी, और यही कारण है कि राजनीतिक अस्थिरता रही है। लेकिन ये बात भी सही है कि रघुवर दास पहले मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, और वो भी सपोर्ट से। आज जो है एक पार्टी वो, और फिर जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी की पार्टी, उसके 6 विधायक बीजेपी में आ गए और फिर ये सरकार 5 साल तक चली। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं, ये सब आकलन है, अनुमान है। अभी तो कुछ ही देर में जब गणना शुरू हो जाएगी तो नतीजे साफ होने लगेंगे, रुझान साफ होने लगेंगे, लेकिन सबके लिए बेचैनी है। कुछ लोगों का कहना है कि हंग असेंबली की तरफ भी जा सकता है। कुछ एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बता रहे हैं, तो कहीं महागठबंधन को। लेकिन एक चीज है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पूर्व कोई गठबंधन नहीं किया है, यानी कि आज तक जो उसका चुनावी तालमेल रहा है उससे हटकर अकेले 81 सीटों पर चुनाव लड़ा है। और साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी की पार्टी ने भी पूरी सीटों पर चुनाव लड़ा है, जबकि महागठबंधन में तो आपको पता ही है कि कांग्रेस, जेवीएम और आरजेडी ये मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। और
तो बेचैनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सबसे ज्यादा है, नतीजों को लेकर
ज्यादा। जाहिर सी बात है कि सत्ता जिसकी है, सरकार जिसके हाथ में है इस वक्त, तो वहां तो बेचैनी ज्यादा होगी।
जी,
लोगों के लिए खोने को कुछ नहीं है, लेकिन खोने के लिए सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है।
बहुत बहुत शुक्रिया। शाम के कार्यक्रम यानी कि दिन भर में हम विस्तृत नतीजों के साथ हाजिर होंगे, और तब तक ये साफ हो जाएगा कि झारखंड में सरकार किसकी बनने वाली है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने कहा है कि सीरिया सरकार की ओर से हुए हमलों के चलते इदलिब प्रांत में रहने वाले 80,000 से ज्यादा आम लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अर्दोगान का कहना है कि ये लोग तुर्की की तरफ आ रहे हैं और इन लोगों का भार उठाने के लिए तुर्की तैयार नहीं है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए नवीन नेगी से।
तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने कहा है कि सीरिया सरकार की तरफ से इदलिब प्रांत में हुए हमलों के कारण वहां से 80,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। खबरों के मुताबिक इदलिब प्रांत में बसे गांव और कुछ शहरों में लगातार हवाई हमले हो रहे हैं, जिनमें कई आम नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ रही है। यही वजह है कि इस प्रांत से बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। इदलिब से भाग कर निकले कुछ लोगों ने वहां के हालात के बारे में यूं बताया। हम लगातार होती बमबारी से डर कर भागने पर मजबूर हो गए। हमें नहीं पता कि हम कहां जाएंगे, लेकिन हमारे घर के पास हालात बहुत बदतर हैं। वहां लगातार बम गिराए जा रहे हैं, आसमान में फाइटर जेट उड़ रहे हैं, सड़क पर भी बहुत ट्रैफिक है, बड़ी संख्या में लोग वहां से निकल रहे हैं। ये थे इदलिब से भागकर दूसरी जगह जाने की कोशिश करते एक युवक के शब्द। अर्दवान ने कहा है कि ये लोग अपने घरों को छोड़कर उनके देश की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ किया कि इतनी बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों को वो अपने देश में शरण नहीं दे सकते।
Bombardımandan kaçan 80 binin üzerinde İdlib'li kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göç etmeye başladı.
हमारे 80,000 से ज्यादा भाई इदलिब में बमबारी का सामना कर रहे हैं और अब वो हमारी सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इदलिब में हिंसा को नहीं रोका गया तो ये संख्या और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ऐसे हालात में तुर्की इतने ज्यादा लोगों का भार नहीं उठा पाएगा। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रचेप तैयब अर्दवान के शब्द। सीरिया की सरकार रूसी सेना के साथ मिलकर अपने देश में विद्रोही लड़ाकों के खिलाफ अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत उन्होंने बड़े इलाके पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है, लेकिन माना जाता है कि अभी भी इदलिब प्रांत में विद्रोही लड़ाकों की मौजूदगी है। वहां पर सीरिया और रूसी सैनिकों को अपना कब्जा करने में कुछ वक्त और लग सकता है। इस बीच ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि रूस के समर्थन वाली सीरियाई सरकार की फौज ने इदलिब में अपनी बढ़त बनानी शुरू कर दी है। सेना ने इस इलाके में विद्रोही समूहों के कब्जे वाले करीब 22 गांवों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। हालांकि इस जंग में दोनों तरफ से दर्जनों लड़ाकों के मारे जाने की सूचना भी है। सीरिया की सरकार ने बार बार कहा है कि वह इदलिब पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहां अभी अलकायदा का प्रभुत्व है।
तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि सीरिया सरकार की ओर से हुए हमलों के चलते 80,000 से ज्यादा लोग घर को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। भारत में नागरिकता कानून और पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ को सजा, दोनों में क्या कोई समानता है? सुनिए पाकिस्तान से वसतुल्लाह खां की डायरी।
माओज़ेदुंग का एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि आसमान तले जबरदस्त उथल पुथल है और परिस्थिति शानदार है। भारत को देखें या पाकिस्तान को, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं। भारत में गुस्से से भरे लड़के लड़कियां फैज़ और हबीब जालिब के गीत गा रहे हैं और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे फहमीदा रियाज की ये नज़्म वायरल हुई पड़ी है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुज़रो, जो होगा देखा जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि श्री अमित शाह ने फहमीदा रियाज की ये नज़्म कभी सुनी होगी, मगर वो ये सोच के करनी कर गुज़रे के जो होगा देखा जाएगा। इसके जवाब में गुवाहाटी से जामे मिलिया तक और चेन्नई से दिल्ली तक युवा और सिविल सोसाइटी भी ये सोच के अपनी करनी कर रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। भारत होके पाकिस्तान, सारी लड़ाई का मरकज़ इस वक्त संविधान है। हमारे यहाँ भी इस वक्त अब्र आलूद ठंडे आसमान तले परिस्थिति शानदार है। एक विशेष अदालत ने भूतपूर्व फौजी सदर परवेज मुशर्रफ को संविधान से मजाक फरमाने के जुर्म में मृत्युदंड क्या सुना दिया, गोया आसमान टूट पड़ा। आधे लोग कह रहे हैं ये ऐतिहासिक फैसला है, बाकी आधे कह रहे हैं कि ये न्याय के नाम पर अन्याय है। अदालत तो अपनी करनी कर गुजरी, जो होगा देखा जाएगा, जबकि सरकार और फौज सोच रहे हैं कि अब क्या करना है। भारत को भी फैसले की घड़ी का सामना है और पाकिस्तान भी अपने भविष्य के चौराहे पे खड़ा है। इस शोर शराबे में कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी कहीं पिछले कमरे में रख दी गई है, जबकि दिल्ली में भी पाकिस्तान को लेके बारी का बुखार मापने का थर्मामीटर किसी रेफ्रिजरेटर में आर्जी तौर पर लगा दिया गया है। दोनों देशों में मीडिया की एक आंख खबर पे है और दूसरी आंख अपने पाजामे पे। धंधा भी चलता रहे पर नाक भी ना कटे, शिकारी भी खुश रहे और शिकार भी पलट के वार ना करे। तटस्थता या गुटनिरपेक्षता का चलन सुकड़ता जा रहा है। जो सवाल भारत में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार से हो रहा है, वही सवाल पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान से हो रहा है। बताओ कि तुम किस तरफ हो, बोलो के पहचाने जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि सीमा के आर पार जो कुछ भी हो रहा है वो बासी कड़ी में उबाल या चाय के कुल्हड़ में तूफान है, मगर बहुतों का ये भी समझना है कि ये इतिहास पढ़ने का नहीं, इतिहास का हिस्सा बनने का समय है। अरब बसंत ऋतु तो गुजर गई, इस वक्त दक्षिण एशिया में बसंत ऋतु है। ये बात तय है कि नया साल सादा नहीं गुजरेगा। नागरिकता का नया कानून हो या परवेज मुशर्रफ की सज़ा, ये तो बस तब्दीली के बहाने हैं। या तो बंदर की बला तवेले के सर जाएगी, या फिर तवेला बंदर के सर पे टूटेगा।
वसतुल्लाह खां की डायरी आप सुन रहे थे। और अब अखबारों के पन्ने पलट लेते हैं। नवीन, आज क्या कह रहे हैं अखबार?
जी मोहन जी, आज दिल्ली के अखबारों में कल प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली थी उसी से जुड़ी खबरें सभी अखबारों में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा कि NRC को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, इस पर एक रियलिटी चेक इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर छापा है। और उन्होंने लिखा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई डिस्कशन कोई चर्चा हुई नहीं है NRC पर, जबकि गृह मंत्री अमित शाह कई मौक़ों पर यह कह चुके हैं कि पूरे देश में जो है NRC लागू किया जाएगा। तो इस पर यह अखबार ने लिखा है कितनी कितनी बार अमित शाह ने यह बात कही है। एक और खबर इसी से जुड़ी हुई, जो विरोध प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, इंडियन एक्सप्रेस ने ये छापी है कि 16 लोगों की जो मौत हुई है उत्तर प्रदेश में से, उसमें से 14 लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। इस बात की पुष्टि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अखबार से की है और इसे अखबार ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। भोपाल से BJP के सांसद प्रज्ञा ठाकुर से जुड़ी हुई एक खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित, जिसमें बताया गया है कि सीट आवंटन को लेकर, एरोप्लेन में सीट आवंटन को लेकर दरअसल वो नाराज़ हो गई थी और जिसकी वजह से वो धरने पर बैठ गई फ्लाइट के अंदर ही।
तो ये बड़ी खबरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन नेगी। जैसा कि पिछले दिनों हमने आपको सूचित किया था कि 28 दिसंबर की सुबह से हमारा नमस्कार भारत कार्यक्रम बंद होने जा रहा है। इस संबंध में हमारे पास चिट्ठियों की एक लंबी कतार सी लगी हुई है। इनमें से कुछ चिट्ठियां पढ़ रहे हैं हमारे सहयोगी रेहान फजल।
सबसे पहला जो पत्र है वो नीरज कुमार का मेरे हाथ में है और ये उन्होंने भेजा है हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। नीरज लिखते हैं कि दिनांक 20 दिसंबर 2019 से हमारे जनपद में इंटरनेट सेवाएं अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर दी गई हैं। इस कारण हम लोग आपके डिजिटल कार्यक्रम को सुनने में पूरी तरह से असमर्थ हैं और एकमात्र विकल्प रेडियो ही बचता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया रेडियो प्रसारण बंद न किया जाए। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो भविष्य में सरकार कभी भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर देगी और आपसे श्रोताओं का संपर्क आसानी से कट जाएगा और विश्वसनीय समाचारों से हम श्रोता वंचित हो जाएंगे। आगे लिखते हैं नीरज कुमार, वैसे BBC हिंदी टीम काफी समझदार है और वो जानती है कि श्रोताओं के लिए क्या सही है और क्या गलत। इस बिंदु पर विचार करते हुए आप अपने रेडियो प्रसारण को बंद करने पर पुनर्विचार करें। इसी तरह का एक और पत्र आया है हमारे पास, तारिणी प्रसाद पंडित ने भागलपुर से लिखा है। वो लिखते हैं, हमने सुना है कि BBC रेडियो कार्यक्रम बंद होने वाले हैं, कृपया ऐसा न करें। मैं तो ईमेल नहीं कर सकता, फिर भी किसी और से ईमेल करा रहा हूं। मैंने इसे बचपन से लेकर आज तक, और आगे लिखते हैं कि उनकी उम्र 60 साल है, आपका कार्यक्रम सुन रहा हूं। आपसे विनती है हमारी सूचनाओं के इस अंग का इस तरह से अंत न करें। हमारे जैसे गांवों में रहने वाले किसानों के लिए देश दुनिया से जुड़ने का एक ही माध्यम है BBC हिंदी। और एक और पत्र हमारे पास आया है जिसको लिखा है गांव बीजासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर राजस्थान से मोहम्मद रफीक बलोच ने। लिखते हैं, BBC हिंदी का प्रोग्राम हम सुन रहे थे, सुनते सुनते सुनने में आया कि BBC हिंदी सेवा बंद हो जाएगी। सुनकर यकीन नहीं हो रहा, क्या सच में BBC हिंदी सेवा बंद हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो हम तक सच्ची न्यूज कौन पहुंचाएगा? जब देश चल रहा होता है तब ये खबरें सुनने को मिलती हैं हमें अन्य चैनलों से कि पूरा देश खुशियां मना रहा है। जब हम BBC पर समाचार सुनते हैं तब हक की न्यूज सुनने को मिलती है, सच की। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया हिंदी सेवा न बंद करें।
रेहान फजल आपकी चिट्ठियां पढ़ रहे थे। और अंत में सुनिए खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
आई एम स्टिल कैपेबल ऑफ प्लेइंग लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, सो आई डोंट नीड टू प्रूव एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ। यू नो आई ट्राई एंड गिव माई बेस्ट, वेदर इट्स बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग।
ये हैं आत्मविश्वास से भरे रविंद्र जडेजा, और जैसा उन्होंने कहा कल वैसा ही उन्होंने कर दिखाया, जिनके नाबाद 39 रन की बदौलत भारत ने कटक में खेले गए तीसरे और निर्णायक मैच में वेस्ट इंडीज को 4 विकेट से मात दी और एक दिवसीय सीरीज 2-1 से अपने नाम की। भारत के सामने जीत के लिए 316 रनों का लक्ष्य था जो उसने रविंद्र जडेजा की उपयोगी पारी के अलावा कप्तान विराट कोहली के 85, केएल राहुल के 77 और रोहित शर्मा के 63 रन के सहारे 48.4 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर वेस्टइंडीज ने निकोलस पूरन के 89 और कप्तान किरण पोलार्ड के नाबाद 74 रन की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 315 रन बनाए। और अब समीक्षा, भारत वेस्टइंडीज एक दिवसीय सीरीज, दोनों टीमों ने क्या पाया?
शिमरॉन हेटमायर जो वेस्ट इंडियन क्लासिकल खुला हुआ खेलने का अप्रोच होता था, कैरिबियन फ्लेवर, वैसा हमें कुछ अंदाज है। क्रिस गेल वैसे प्लेयर अब रहे नहीं है, लेकिन शिमरॉन हेटमायर में ऐसी एबिलिटी है,
ये कहना है क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन का। और हेटमायर की बदौलत भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली गई 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज बेहद रोमांचक हो गई। पहले मैच में तो हेटमायर ने 139 रनों की तूफानी पारी खेली, उनकी फॉर्म का फायदा वेस्ट इंडीज को तो मिला ही, साथ ही आईपीएल के नीलामी में भी उनकी जमकर बोली लगी। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 7,75,00,000 रुपए में खरीदा। उनके अलावा शाई होप ने भी पहले मैच में 102 रन नाबाद रहते हुए बनाए, दूसरे मैच में भी उन्होंने 78 रन बनाए, तो निकोलस पूरन ने भी दूसरे मैच में 75 और कल तीसरे मैच में 89 रन बनाकर अपना दमखम दिखाया। कप्तान पोलार्ड भी कल 74 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के पूर्व ऑलराउंडर मदनलाल भी इनसे खुश हैं।
हाँ बिल्कुल, दमखम दिखाया है। पुरान ने बड़ा अच्छा बैटिंग की है, उसके बाद हिटमैन ने एक मैच में 100 बनाया, बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और होप्स ने रन बनाए, उनके कैप्टन पोलार्ड, ये 4-5 बैट्समैन है जो कि ज्यादा से ज्यादा रन बना रहे हैं।
दूसरी तरफ कल भारतीय टीम में चोटिल तेज गेंदबाज दीपक चहर की जगह नवदीप सैनी को शामिल किया गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की 2020 और 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों ने 18 कैच टपकाए। दीपक चहर भी अपनी निराशा छुपा नहीं सके।
आई थिंक वी हैव बीन लैकिंग विद द फील्डिंग, यू नो लास्ट 4 मैचेस यू नो वी हैव ड्रॉप टू मेनी कैचेस।
कमजोर फील्डिंग की बात को रविंद्र जडेजा ने भी ईमानदारी से स्वीकार किया।
T20 और वनडे दोनों सीरीज में कैच ड्रॉप हुए, तो जो हमारा फील्डिंग स्टैंडर्ड है, यंग ग्रुप है, एक्चुअली होना तो नहीं चाहिए और थोड़ा हम लोग नेक्स्ट सीरीज में कैचिंग के ऊपर और कॉन्सेंट्रेट करेंगे।
कहां तो एक समय भारत अपने तेज गेंदबाजों और शानदार फील्डिंग के दम पर मैच जीत रहा था और कहां ये हालत है। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और अब दीपक चहर का चोटिल होना गंभीर बात है। मदनलाल फील्डिंग और घायल गेंदबाजों को लेकर कहते हैं,
देखिए बड़ी हैरानी वाली बात है क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हम इनकी फील्डिंग की भी तारीफ कर रहे थे कि बड़ी अच्छी फील्डिंग साइड है, बट हाँ ये 2-3 2020 मैचेस में उन्होंने बड़े कैचेस छोड़े हैं और उसके साथ साथ वनडे में भी इन्होंने कैचेस छोड़े हैं। पर यह है कि ये एरिया एक ऐसा एरिया है जिसमें आप इंप्रूव कर सकते हैं और बाकी है कि यहाँ पर रोटेशन पॉलिसी रहनी चाहिए बॉलर की, क्योंकि भारतीय जो पेस बॉलर है अगर ऐसे इंजर्ड होते चले जाएंगे तो अभी वैक्यूम दिखाई दे रहा है। जैसे जसप्रीत बुमराह जो अनफिट हुए हैं, उसके बाद दीपक चहर और भुवनेश्वर, ये भी एक एरिया है जहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा फिटनेस का।
कमजोर फील्डिंग, घायल गेंदबाज, शायद यही कारण है कि सारा भार रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और कप्तान विराट कोहली पर था, जिनकी बल्लेबाजी का जलवा लगातार देखने को मिला। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने शतक भी बनाए और इस सीरीज से भारत की सबसे बड़ी चिंता विकेटकीपर ऋषभ पंत को लेकर भी समाप्त हुई, जिन्होंने 71 और 39 रनों की पारी खेलकर कप्तान को खुश किया। लेकिन इसके बावजूद वेस्ट इंडीज भले ही सीरीज 2-1 से हार गया, लेकिन पूरी दुनिया में उसने अपना खोया भरोसा पाया और क्या ये कम है। उधर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को 6-7, 7-5, 7-6 से हराकर विश्व टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। नागरिकता संशोधन कानून पर देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून का बचाव किया। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगान ने कहा कि इदलिब प्रांत में सीरिया सरकार के हमलों से परेशान 80,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर तुर्की की तरफ आ रहे हैं। अमरीकी सीनेट के डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग के लिए प्रमुख गवाहों को पेश करने की मंजूरी देने की अपील की। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के आज के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में।
स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।